आज है 9 दिसंबर दिन बुधवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में सुषमा स्वराज ने कहा, अफगानिस्तान में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को है भारत तैयार।
लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड आवर हैंड टू पाकिस्तान एज वेल। इट इज टाइम दैट वी डिस्प्ले द मैच्योरिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस।
नेशनल हेराल्ड का मामला आज भी संसद में गूंजा। और 16 साल बाद जनता ने क्यों मुंह फेर लिया ह्यूगो चावेज की पार्टी से?
ह्यूगो चावेज नहीं है, वो जब वेनेजुएला में थे तब उनकी करिश्मा, उनकी अपील वो बहुत भारी थी। वेनेजुएला की मेन इनकम आती है वो पेट्रोल से आती है और पेट्रोल प्राइसेस काफी गिर गए हैं।
दुनिया जहां में होगी इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंची भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार शाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व सैन्य शासक राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने चरमपंथ पर अलग अलग बयान दिए हैं। जहां इस्लामाबाद में चल रहे सम्मेलन में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी चरमपंथी संगठन का साथ नहीं देगा, परवेज मुशर्रफ ने कहा कि भारत प्रशासित कश्मीर में लड़ने वाले दहशतगर्द नहीं बल्कि मुजाहिदीन हैं। बीबीसी उर्दू को दिए एक खास इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हम उन्हें मुजाहिदीन कहते हैं, उन्हें कश्मीर और पाकिस्तान में बड़ी मदद हासिल है। सीरिया में सरकार के साथ हुए एक समझौते के तहत सीरियाई विद्रोही लड़ाकों ने होम्स शहर से हटना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की मदद से हुए इस समझौते के बाद अलवायर से बाहर हटने पर होम्स शहर पर अब सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। होम्स छोड़ने वाले सैकड़ों विद्रोही, जिनमें कईयों को अलकायदा से जोड़ा जाता है, इदलीब प्रांत के पूर्वी हिस्से में जाएंगे जो अब भी विद्रोहियों के कब्जे में हैं। उधर सीरियाई विद्रोही दलों के 100 से अधिक प्रतिनिधि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बातचीत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अगले साल राष्ट्रपति असद की सरकार के साथ शुरू होने वाली वार्ता से पहले एक साझा सहमति बनाना है। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वाल्स ने कहा है कि फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस हमलों के दौरान बटकलान थिएटर में गोलीबारी करने वाले तीसरे हमलावर की पहचान कर ली है। प्रधानमंत्री वाल्स ने हमलावर का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने उन रिपोर्टों का खंडन भी नहीं किया जिसमें स्ट्रासबर्ग में रहने वाले 23 साल के फ्रांसीसी नागरिक फौत मुहम्मद का नाम लिया गया था। पिछले महीने हुए इस हमले में 90 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री वाल्स ने कहा, उसकी पहचान कर ली गई है। अब यह फ्रांसीसी अभियोजक फ्रांसुआ मोलिन जो इस हमले की जांच कर रहे हैं, वह नाम दे दिया गया है, लेकिन मैं जांच के बारे में बात नहीं कर सकता। जरूरी यह है कि जांच आगे बढ़ रही है और हमला करने वालों को पहचाना जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। इसमें समय लगेगा और दुर्भाग्य से हमारे सामने मौजूद चरमपंथ के खतरे का सामना करते हुए हमें चरमपंथियों को पकड़ने का काम करना है, क्योंकि हम चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के साथ युद्ध की स्थिति में हैं। ये थे फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वाल्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान में अधिकारियों ने कहा है कि कांधार के दक्षिणी प्रांत में हवाई अड्डे पर हुए एक तालिबानी हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कुल 37 लोग मारे गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार एक चरमपंथी अभी भी हवाई क्षेत्र के अंदर से लड़ रहा है, जहाँ संयुक्त नाटो और अफगान सैन्य मुख्यालय हैं। अधिकारियों के अनुसार 9 अन्य चरमपंथी मारे गए हैं। यह हमला मंगलवार की शाम को हुआ जब भारी हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाके इस सुरक्षित बेस में घुस आए। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा से। पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने गई भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज से अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात की है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि दोनों देशों की तरफ से एक संयुक्त बयान थोड़ी देर में ही जारी किया जाना है। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से जुड़े हुए हैं शहजाद मलिक। शहजाद, इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है आपको?
जी, जिस तरह आपने बताया कि मुलाकात अभी भी जारी है भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज और फॉरेन अफेयर्स के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं सरताज अजीज़, तो इम्कान यही है कि थोड़ी देर में जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी हो जाएगी, और जिसके बाद ये भी इस इम्कान को भी जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों लीडर मीडिया से भी टॉक करें। بہرحال سارے لوگ ابھی بھی اسی انتظار میں ہیں، یا تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئے گی تو یا پھر وہ میڈیا سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو درینہ مسائل ہیں ان کے لیے ڈائیلاگز ہونا ضروری ہیں، اور اس کے لیے بھی یہ بھی ضروری ہے کہ جو رابطے ہیں گورنمنٹ اور لوگوں کے درمیان، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہیں، اس کو مزید بڑھاوا دیا جائے تاکہ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہیں دونوں ملکوں کے درمیان وہ کسی حد تک کم ہو سکیں. جی
جی شہزاد صاحب، اس خبر پر آپ نظر بنائے رکھیے گا، آپ کے پاس دوبارہ لوٹیں گے. وہیں اس سے پہلے ہارٹ آف ایشیا سمیلن میں ودیش منتری سشما سوراج نے کہا کہ بھارت پاکستان سے سمپرک اور ویاپار بڑھانے کے لیے افغانستان سے سمپرک بڑھانے کے لیے تیار ہے تاکہ افغانستان کی مدد کی جا سکے. ساتھ ہی انہوں نے سنیکت راشٹر کے مہا سچیو کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو غیر قبائلی اور جاتی دشمنی سے زیادہ خطرہ چرم پن سے ہے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں جڑ چکے ہیں ظہیر بابر، جو صبح سے اس خبر پر نظر بنائے ہوئے تھے. ظہیر، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سشما سوراج نے اپنے بھاشن میں کن باتوں پر زور دیا.
جی سشیلا، سشما سوراج نے جو ایجنڈا لے کر آئی تھیں سیدھی وہ اپنی تقریر میں اسی پر گئیں کہ بھارت افغانستان کے ساتھ تجارت چاہتا ہے، بھارت کا مال جو ہے وہ افغانستان پہنچے اور افغانستان کا مال جو ہے وہ بھارت پہنچے، اور اس کے لیے کی ہے پاکستان کا راستہ.
Nothing can benefit Afghanistan more immediately than full and direct overland access to India's markets.
سشما سوراج کہہ رہی ہیں کہ افغانستان کو اس سے زیادہ کوئی فائدہ فوری طور پر نہیں پہنچ سکتا کہ جو افغانستان کے تاجر ہیں انہیں لینڈ روٹ یعنی سڑکوں کے ذریعے بھارت کی منڈیوں تک کھلی رسائی دی جائے. جو زیرو کسٹم رجیم ہے افغانستان کے تاجروں کے لیے، اس سے وہ بھارت سے فائدہ اٹھا سکیں، اور بدلے میں پھر بھارت کو بھی یہ سہولت ہو کہ وہ افغانستان تک اپنا جو مال ہے وہ پہنچائے. اس کے علاوہ انہوں نے بات کی ایران کی بندرگاہ کا حوالہ دیا کہ بھارت جو ہے وہ بھی خاصا کین ہے اس طرف سے افغانستان کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کے لیے، اور اس دوران انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ بھارت افغانستان کے ساتھ تجارت کے معاملے پر جو تینوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس سے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے. اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنیے کہ سشما سوراج نے مزید کیا کہا.
Let me take this opportunity to extend our hand to Pakistan as well. It is time.
انہوں نے کہا کہ اس موقع پر وہ پاکستان کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتی ہیں، وقت آ گیا ہے کہ دونوں ملک آپس میں کاروبار کے لیے بالغ نظری یعنی میچورٹی کا مظاہرہ کریں، خود اعتمادی کا مظاہرہ کریں، علاقائی تجارت اور تعاون کو مضبوط کریں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا تبدیلی چاہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آؤ کیوں نہ مل کر دنیا کو مایوس نہ کریں.
جی تو سشما سوراج کا یہ کہنا تھا کہ میچورٹی دکھانی چاہیے دونوں دیشوں کو. وہیں اشرف غنی کی بات کی جائے تو انہوں نے کئی دیشوں کے نام لیے اور کہا کہ ان سے انہیں مدد مل رہی ہے، اور انہوں نے اپنے بھاشن میں بھارت کا بھی نام لیا، لیکن وہ پاکستان سے خاصے ناراض دکھائی دے رہے تھے، کیوں؟
اب سشما، ایسا ہے کہ آج جس انداز میں افغان صدر اشرف غنی کا پاکستان نے یہاں پر استقبال کیا، ایئرپورٹ پر باقاعدہ سٹیٹ ریسیپشن دیا گیا، 21 توپوں کی سلامی دی گئی، پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف خود ایئرپورٹ پر پہنچے، چیف آف آرمی سٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہ جو تھے وہ وہیں پر تھے ایئرپورٹ پر، اور بڑا بھرپور قسم کا استقبال یہاں پر کیا گیا. لیکن جب کانفرنس شروع ہوئی تو وزیراعظم میاں نواز شریف نے افتتاحی جو خطاب کیا، پہلے سنیے کہ انہوں نے کیا کہا.
افغانستان از اے سوورن اسٹیٹ اینڈ دی انٹرنیشنل کمیونٹی فلی ریسپیکٹس.
وزیراعظم نے یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان مکمل طور پر ایک خود مختار ریاست ہے، اس کی سرحدوں کا احترام ہونا چاہیے، بین الاقوامی برادری بالکل یہی سمجھتی ہے، تسلیم کرتی ہے. اور وزیراعظم کے اس بیان پر افغان صدر اشرف غنی نے یہ کہا کہ یہ جو بات وزیراعظم نے خاص طور پر کی ہے کہ آئین کے تحت جو واحد طاقت ہے افغانستان میں وہ وہاں کی منتخب حکومت ہی ہے جو جمہوری طریقے سے وہاں پر آئی ہے، اور جو افغانستان کی خود مختاری کی بات کی ہے اس کا انہوں نے ادراک کیا اور کہا کہ ان کی یہ بات بہت دور تک جائے گی اور اس بات کے ذریعے دونوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہونے کا موقع ملے گا اور اب جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ نشاندہی کی کہ جو افغانستان میں سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ صرف افغانستان کا نہیں ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں کوشش کی کہ یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ ایک علاقائی معاملہ ہے، علاقائی مسئلہ ہے اور اس سے مل کر نمٹنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ جو ریاستی غیر ریاستی عناصر ہیں ان کی آڑ میں اپنی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھایا جائے کسی بھی ملک کے اندر۔ ان کا مزید کہنا تھا،
وٹ ایور دا جسٹیفیکیشن آف دوز ٹائپس آف بیہیویئر ان دا پاسٹ، ان دا کرنٹ تھریٹ انوائرمنٹ وی مسٹ ڈسٹنس آور سیلف۔
افغان صدر اشرف غنی کہہ رہے تھے کہ اس طریقہ کار کی جو بھی توجیہات یا وجوہات ہوا کرتی تھیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان کی پشت پناہی اس کو بند کریں۔ البتہ ان کا جو موڈ تھا وہ خاصا پاکستان کے ویلکمنگ رویے کو تسلیم کرنے والا تھا اور انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ انہوں نے یہ اندیا ضرور دیا کہ وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کے ساتھ ان کا جو اتفاق رائے ہوا ہے اس کے تناظر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس استنبول پروسیس کے تحت ہی اب ایک ایسا نظام لایا جانا چاہیے جس میں طالبان ہوں یا داعش ہو یا ایسے عناصر جو اس امن کے عمل کو سبوتاج کرتے ہیں ان کی ایک مل کر نشاندہی کی جائے اور لائنز ڈرا کی جائیں کہ کن کے ساتھ ہم نے مفاہمت کرنی ہے، کن کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، کن کے ساتھ لڑنا ہے، اور جن کے ساتھ لڑنا ہے ان کے خلاف مشترکہ اپروچ ہونی چاہیے، اور جن کے ساتھ بات چیت کرنی ہے ان کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کی جائے اور اس میں صرف پاکستان اور افغانستان ہی نہ ہوں بلکہ جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس استنبول پروسیس کے جتنے شریک ممالک ہیں وہ ہوں اور انٹرنیشنل سیکیورٹی آرگنائزیشن جو ہوں وہ اس کی ضامن بنے، اس طرح کا ایک معاہدہ جو ہے وہ وجود میں لایا جائے۔
جی بہت چھوٹے میں آپ سے جانا چاہیں گے کہ اشرف غنی میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے امید جتائی ہے کہ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں دونوں دیشوں میں، تو ایسے میں امیدیں بہت بند رہی ہیں جو کہ آپ نے بھی بتایا، تو پاکستان کے سامنے کیا چیلنجز، کیا چنوتیاں ہو سکتی ہیں؟
امیدیں یقیناً بند رہی ہیں لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کانفرنس ہے اس نے خاص طور پر موقع دیا ہے تین ملکوں کو آپس میں لانے کا، جو ہے بھارت، درمیان میں پاکستان بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا دوسرا ہمسایہ افغانستان۔ بہت رنجشیں تھیں حالیہ مہینوں کے دوران پاکستان کی دونوں ہمسایوں کے ساتھ، جو معاملات تھے وہ خاصے خراب چل رہے تھے۔ ایک موقع ضرور ملا کہ تینوں قریب آئے، بیٹھے اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے ساتھ، لیکن اب سنیے کہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے چلتے چلتے اختتام پر کیا کہا، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جو شرائط ہیں دونوں تینوں ممالک کی ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر قائم دائم ہیں۔
تجارت پر ارتباط کم سوال تو غواڑو جدا تجارت
شروع کی گئی۔ اختتامی پریس کانفرنس میں جب افغان وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ وسطی ایشیا کے ملکوں کے لیے تجارت کے لیے راستہ چاہتا ہے تو آپ کیا کہیں گے، کیا آپ پاکستان کو وہ راستہ دے سکتے ہیں، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ پاکستانی تاجروں کو تبھی راستے ملیں گے جب افغانستان کے تاجروں کو بھارت کے لیے راستے جو ہیں ان کے وہ کھلے رہیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ شرائط تینوں ملکوں کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے قائم ہیں۔ ہاں البتہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو دو دن کے بعد ختم ہوئی ہے اس سے تینوں ملکوں کی ہائی لیول کی لیڈرشپ کو آپس میں بیٹھنے کا موقع ضرور ملا ہے۔
جی بہت بہت دھنیواد، یہ تھے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ظہیر بابر۔ اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ سنسد میں نیشنل ہیرالڈ کا مدعا جو ہے آج دوسرے دن بھی گونجتا رہا۔ کانگریس نے نریندر مودی سرکار کو اسے بدلے کی کاروائی بتایا اور اس کے پیچھے پردھان منتری کاریالے کو ذمہ دار بتایا، تو بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس جو آروپ لگا رہی ہے اس کا پرمان پیش کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل ہیرالڈ معاملے میں کانگریس کی پرمکھ سونیا گاندھی اور اپادھیکش راہل گاندھی کو 19 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत में पेश होना है। इन पर आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से नेशनल हेराल्ड अखबार की हजारों करोड़ों की जायदाद को हासिल किया है। आज की संसद कार्रवाई पर नजर रखे हुए थे सलमान रावी, मैंने उनसे अब से थोड़ी देर पहले इस मामले पर पूरी जानकारी मांगी।
आज राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज सुबह से ही काफ़ी एग्रेसिव थी, क्योंकि हमने देखा लोकसभा में उनको जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो पीछे से भी बहुत कुछ बोल रहे थे वो, और ख़ास तौर पे कई बार उन्होंने जनरल वी के सिंह की तरफ इशारा किया। और जब बाहर निकले संसद से तो फिर उन्होंने कहा कि दरअसल ये सरकार जो है वो प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, राजनीतिक प्रतिशोध कहा उन्होंने।
100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. This is what this is. This is their way of doing politics.
तो राहुल गांधी को आपने सुना क्या कह रहे थे कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सरकार काम कर रही है, और विशुद्ध रूप से उन्होंने कहा कि 100% प्रतिशोध की भावना है ये।
जी वहीं आज संसद में देखा गया कि दूसरे दिन भी नेशनल हेराल्ड का मामला गूंजा और संसद की कार्रवाई बाधित रही।
लोकसभा राज्यसभा दोनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा में तो काफी जमकर हंगामा हुआ, क्योंकि सारे जितने सदस्य थे कांग्रेस के वो सब वेल में आ गए और नारे लगा रहे थे। लोकसभा में भी काफी हंगामा चलता रहा, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि सरकार जो है वो विपक्ष के नेताओं को सताने का काम कर रही है।
ये जो नीतियां दो हो रही है, एक उनके लिए कानून, एक दूसरों के लिए कानून, और खास करके ये जो सताया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को, और जो लोग निष्ठावंत है, प्रामाणिक है, उनको डराने के लिए, उनको दबाने के लिए और उनके उनके आवाज को दबाने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही। अगर आप दबा के हमारे आवाज को बंद करना चाहते हैं, कभी नहीं होगा और उसको होने भी नहीं।
लेकिन खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद में बोलते हुए कहा कि सरकार का नेशनल हेराल्ड के मामले से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना था कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, और बल्कि उन्होंने चुनौती भी दी कांग्रेस को कि आप यहां सदन में बोलने की बजाय आप कोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए।
इनके पास कोई तथ्य नहीं है, और जो कोर्ट ने जो आदेश दिया वो कोर्ट का आदेश के पीछे सरकार का कोई रोल नहीं है। ये कोर्ट का आदेश है, ये लोग कोर्ट का आदेश को पालन नहीं करना चाहते। यहाँ पार्लियामेंट के द्वारा जुडिशियरी को धमकी दे रहे, पार्लियामेंट के द्वारा जुडिशियरी को ये लोग चेतावनी दे रहे, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। मैडम आपने देखा होगा उनका जमाने में हमारा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को जेल भेजा, इनका जमाने में हमारा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को जेल भेजा, उनका जमाने में हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रधानमंत्री को पुलिस थाने पे बुला के इंक्वायरी किया, ये सब इनके जमाने में हुआ, सबको मालूम है।
लेकिन इस बीच में सबसे कमाल की बात जो सामने आ रही है वो है कि आज सोनिया गांधी का जन्मदिन भी था, और इन तमाम तलखियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी, और विपक्ष के कई नेताओं ने बधाई तो दी ही, साथ साथ सत्तारूढ़ पार्टी के भी नेताओं ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। नरेंद्र मोदी ने तो बाकायदा ट्वीट करके जो है शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ तलखियाँ हैं, संसद में हंगामा हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो दोस्ती के भी हाथ हैं और प्लेजेंट्रीज भी एक्सचेंज हो रही हैं।
तो संसद की कार्रवाई नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर हुई बाधित, ये थे सलमान रावी। बाढ़ से प्रभावित तमिलनाडु राज्य के कई इलाकों में पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन चेन्नई के लोगों के लिए अब पानी से फैलने वाली बीमारियां एक बड़ी चुनौती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों के सामने हैजे और पीलिया के पिछले एक हफ्ते में मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन वे स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एहतियात बरत रहे हैं। चेन्नई से इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
चेन्नई में भयंकर बारिश और बाढ़ के बाद ये एक तरह की खुशखबरी है कि चेन्नई में कॉलरा और जॉन्डिस के कोई मामले सामने नहीं आए हैं। कई दिनों तक शहर के कई इलाकों में पानी भरे रहने के बाद महामारी की आशंका को देखते हुए तमिलनाडु सरकार काफ़ी सतर्क है। तमिलनाडु सरकार के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन कहते हैं, हालांकि हमें राहत मिली है, हम अगले 4 से 6 हफ्तों तक निगरानी रखेंगे। हमारा फोकस उन इलाकों पर होगा जहां अभी भी सूखा नहीं हुआ है। ये थे जे राधाकृष्णन के शब्द। चेन्नई में ज्यादातर शिकायतें डायरिया, जुकाम और पैरों में पानी के वजह से त्वचा गलने के हैं। सरकार ने करीब 1100 मेडिकल कैंप या मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात किए हैं। उनमें से एक मोबाइल मेडिकल यूनिट में जब हम जायजा लेने के लिए गए तो बहुत सारे लोग वहाँ डॉक्टर से अपने स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग खुश थे, लेकिन ज्ञानेश्वर किरण जैसे लोग थोड़ा ना खुश भी थे। मेरे पैर में त्वचा पानी की वजह से गल रही है, लेकिन इस मोबाइल यूनिट में सिर्फ टैबलेट दे रहे हैं, इनके पास मलहम नहीं है। ये थे ज्ञानशेखरन के शब्द। लेकिन तमिलनाडु ड्रगिस्ट और केमिस्ट संस्था के अधिकारी ने कहा कि राज्य में कहीं भी दवा की कमी नहीं है। तमिलनाडु में सार्वजनिक स्वास्थ्य की हालात बेहतर दिख रही है, लेकिन इतनी बाढ़ और बारिश के बाद सावधानी जरूरी है। चेन्नई से इमरान कुरैशी।
और अब समय है दुनिया जहां का। वेनेजुएला के चुनाव में दक्षिणपंथी विपक्षी गुट ने बहुमत हासिल कर लिया है। ह्यूगो चावेज ने वामपंथी आंदोलन को खड़ा किया और फिर वहां सरकार बनी, लेकिन अब वो कमजोर पड़ गई है। मुमकिन है कि चावेज के भरोसेमंद रहे राष्ट्रपति मुद्रो को भी कुर्सी छोड़नी पड़े। चावेज उस आंदोलन के अगुवा थे जिसने अमरीका को चुनौती देने का मादा दिखाया था, और 16 सालों से देश के लोग उनके साथ चट्टान की तरह खड़े थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया? इस हफ्ते दुनिया जहां में निखिल रंजन ने यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान। क्यूबा के फिदेल कास्त्रो से सीख लेकर ह्यूगो चावेज ने वेनेजुएला में जिस वामपंथी समाजवादी सरकार की मजबूत नींव रखी, वो उनके निधन के महज 3 साल बाद ही जनता का भरोसा खोती नजर आ रही है। यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला नेशनल असेंबली में अल्पमत में आ गई है। विपक्षी दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन ने नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल कर लिया है और अब राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कुर्सी से हटाने की तैयारी है। 16 साल तक अजेय रहने के बाद ह्यूगो चावेज की विरासत इतनी जल्दी कैसे कमजोर पड़ गई? वेनेजुएला में भारत के राजदूत रहे निरंजन देसाई।
पहली बात ये है कि ह्यूगो चावेज नहीं है। वो जब वेनेजुएला में थे तब उनकी करिश्मा, उनकी अपील वो बहुत भारी थी, मगर जब से चावेज नहीं रहे हालात बिगड़ती गई। दूसरी बात ये है कि जो वेनेजुएला के मेन इनकम आती है वो पेट्रोल से आती है, और पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी गिर गए हैं, तो इसलिए वेनेजुएला में प्रॉब्लम हो गया कि उनके फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम हो गया, इम्पोर्ट्स कम हो गए, सप्लाईज कम हो गए, वहाँ इंडस्ट्रीज इतनी नहीं है, एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है, 90% ऑफ द बजट कम फ्रॉम ऑयल इनकम। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये मिस्टर मडुरो उसका कोई उपाय नहीं कर सके, इसलिए लोगों ने ये फैसला लिया कि पार्टी बदलना चाहिए।
लंबे समय तक अजय रहना ही ह्यूगो चावेज की कामयाबी नहीं थी। बेहद गरीब परिवार से आने वाले चावेज ने वेनेजुएला में तेल कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती दी और एक ऐसी सरकार का नेतृत्व किया जो बहुसंख्यक गरीब लोगों के हितों की बात करती थी। उनके शासन में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हो गईं और दूसरी सुविधाओं से निचले तबके के लोगों का जीवन आसान होने लगा। ह्यूगो चावेज का निजी करिश्मा भी खूब काम आया।
एक दिन जब वो मेरे घर पर खाने पर आए थे, वो जब प्रेसिडेंट नहीं थे, तो हमने एक डिश बनाई थी गुलाब जामुन, तो वो तो बड़े आराम से खा रहे थे। फिर मुझे बताया कि वो जब स्कूल में पढ़ते थे, इनकी ग्रैंडमदर ऐसी कुछ चीज़ें बनाती थी और वो साइकिल पर ले जाकर बेचते थे। इनको बेसबॉल खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वो आर्मी में ज्वाइन हुआ। उनको पता चला कि वेनेजुएला में काफ़ी प्रॉब्लम है, करप्शन ज़्यादा है, डेवलपमेंट नहीं है, तो उन्होंने अपने फेलोस आर्मी कैडेट से एक ग्रुप बनाया जिन्होंने एक कू अटेम्प्ट किया था। कू अटेम्प्ट फेल हुआ था, चावेज लीडर थे, तो उन्होंने सोचा कि वो चावेज को टीवी पर ले आएंगे और चावेज अपने फॉलोअर्स को बोले कि हथियार फेंक दो। तो चावेज टेलीविजन पर बोले कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं ये काम पूरा नहीं कर सका और मैं ये पूरी जिम्मेदारी लेती। ये शब्द जिन्होंने बोला मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये सारा वेनेजुएला को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। पहली बार किसी पॉलिटिशियन और लीडर ने ऐसा बोला कि उसकी जिम्मेदारी है।
चावेज की मुश्किल ये थी कि उनके सामने चुनौतियां बहुत थीं और देश में बुनियादी ढांचे का अभाव उनके सामने किसी चट्टान की तरह अड़ा था। उनके पास लोकतांत्रिक संस्थाएं भी नहीं थी जिनसे कि वो मदद लेते। बहुत कोशिश करके भी वो भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सके। चावेज ने सत्ता में आने के बाद चीन और भारत से संबंध मजबूत करने चाहे और इसमें कामयाबी भी पाई, लेकिन क्यूबा से लेकर अर्जेंटीना तक ने पूंजीवाद के विरोध के जिस रास्ते पर चलकर तरक्की का सपना देखा वो ज्यादा समय तक साथ न चल सका। वामपंथी सरकारों को अमरीकी विरोध की भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चावेज ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कभी अमरीकी राष्ट्रपति को बुरा भला कहा तो कभी गीत भी गाए। देश में जब स्थिति इतनी खराब नहीं थी तब तक तो तालियां बजती रहीं, लेकिन आज जब एक बार फिर गरीबी और समस्याओं ने सिर उठा लिया है तो क्रांतिकारी सरकार से लोगों का मोह भंग हो रहा है। पेट्रोलियम की गिरती कीमत कई देशों में सत्ता परिवर्तन का भी जरिया बन रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अब्दुल नफे।
कोई भी देश जो पेट्रोल जैसी वस्तु पर निर्भर हो, ऑयल कंपनीज के बिना नहीं काम चल सकता, उसका ऑयल मार्केट के बिना काम नहीं चल सकता। वेनेजुएला क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है लेकिन सच बात है रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट करता है। वेनेजुएला का सारा तेल जो है अमेरिका की रिफाइनरीज में ही जा रहा था 13 साल से। अब चावेज कितने भी बड़ी समाजवाद की बात करें और अमरीका को कुछ भी बुरा भला कहते रहे, क्रांतिकारी बातें करते रहे, लेकिन आर्थिक जो एक सच्चाई थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी शुरू से।
लातिन अमरीका में सिर्फ ब्राजील ही ऐसा देश है जो विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देशों ने लंबे समय तक अमरीका का विरोध करने के बाद अब उसे संपर्क जोड़ना शुरू कर दिया है। वेनेजुएला में चावेज की विरासत संभालने वाले निकोलस मादुरो की योग्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी वफादारी की वजह से ये कुर्सी मिली। निरंजन देसाई।
मादुरो सिर्फ एक लॉयलिस्ट था, मैं उनको जानता नहीं हूं, मगर जो मैंने जो पढ़ा है सुना है उसमें इतनी ज़्यादा काबिलियत नहीं है। वो सिर्फ पावर में आए क्योंकि चावेज ने उनको डिजिग्नेट किया था एज ए सक्सेसर।
वर्तमान में स्थिति इतनी खराब है कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए आम लोग सुबह उठते ही लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था लाचार है और उस पर से विशाल सामाजिक खर्चों का बोझ उसकी कमर तोड़ रही है। चीन ने पहले से ही बड़ा कर्ज दे रखा है और उसके बदले वहां से तेल निकाल रहा है। जानकार मानते हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त में जिस दुरंदेशी और करिश्मे की जरूरत है वो मौजूदा नेताओं में नदारद है।
जो लोग जीत करके आए हैं दे हैव वॉन बाय डिफॉल्ट। ये जो मादुरो की पॉलिसीज है उसके खिलाफ वोट है, उनके पास न कोई प्रोग्राम है न कोई एजेंडा है। और दूसरी बात ये कि वेनेजुएला में मुझे लगता है अब राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 13 साल में वो गरीब, वो मजदूर, गाँव के लोग, किसान, जिनको कुछ दिया था चावेज ने, वो इतनी आसानी से अपने अधिकारों को छोड़ने वाले नहीं है। लोगों ने बहुत आइडेंटिफाई कर रखा था अपने आप को चावेज के साथ, तो वो शायद संभाल ले। उनकी लीडरशिप थी वो उधर अलग किस्म की थी। असल में 1998 में चावेज आए थे पहली बार, उससे पहले का जो दौर था वेनेजुएला सिर्फ कुछ एक लोगों की जागीर थी, पेट्रोलियम कंपनीज और पेट्रोलियम जो एग्जीक्यूटिव थे पूरा देश उनके लिए था। कभी किसी एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, छोटे उद्योगों के क्षेत्र में कभी कुछ नहीं हुआ। वहाँ रूरल एरियाज में वेनेजुएला में इस कदर गरीबी थी कि बयान से बाहर।
संगीत के शौकीन रहे चावेज ने अपनी धुनों पर वेनेजुएला को नचा तो लिया, लेकिन ये महफिल उनके जाने के साथ ही सूनी हो गई है। वेनेजुएला को एक नए मसीहा का इंतजार है। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
आपको निखिल रंजन का दुनिया जहां कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंची भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार शाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। सीरिया में सरकार के साथ हुए एक समझौते के तहत सीरियाई विद्रोही लड़ाकों ने होम्स शहर से हटना शुरू कर दिया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स ने कहा है कि फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस हमलों के दौरान बटकलान थिएटर में गोलीबारी करने वाले तीसरे हमलावर की पहचान कर ली है। अफगानिस्तान में अधिकारियों ने कहा है कि कांधार के दक्षिणी प्रांत में हवाई अड्डे पर हुए एक तालिबानी हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कुल 37 लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि साल 2014 में शुरू हुए सरकार और रूसी समर्थक सेना के बीच पूर्वी यूक्रेन में संकट में अब तक 9,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। विवादित नगोर्नो कारबख के एनक्लेव के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि अजरबैजान के टैंकों ने 20 सालों में पहली बार उनके ठिकानों पर हमला किया है। तकनीकी जगत के दो पत्रिकाओं में छपी खबरों में बताया गया है कि विवादास्पद डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन का आविष्कार एक ऑस्ट्रेलियाई इंटरनेट उद्यमी क्रेग स्टीफन राइट ने किया था। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी मानसी दास। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।